हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए। इनके जुल्म व सितम से अवाम तंग आ गई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। हिंदुस्तान के रहनुमा अवाम के साथ थे। अंग्रेज़ों ने भी इन्हें कैदोबंद की सजाएं दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। दूबदू लड़ने की बजाय इन लोगों ने अमन और शांति की राह अपनाई तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। आज़ादी के इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी भी थे। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालफत की। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामशक्क़त क़ैद की सज़ा सुनाई और वो क़ैद में महीनों चक्की पीसते रहे। आज हम जो मज़मून सुनने वाले हैं, इस मज़मून में मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पेश किया है। इस मज़मून को लिखा है नूरुल हसन नकवी। आप सुन रहे हैं उर्दू अदब पॉडकास्ट, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन। नूरुल हसन नकवी सन 1933 में अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में लेक्चरर हो गए। उन्होंने सर सैयद और मसफ़ी पर तहकीकी काम किया और इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास की रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। खाका निगारी में इनका नाम अहमियत रखता है। तस्वीरें उजालों की इनके खाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ और फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी नामक किताबें भी लिखी हैं। तो आइए सुनते हैं नूरुल हसन नकवी का लिखा हुआ मज़मून मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिलफरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले गुरविदा हो जाए, लेकिन जिन खुशनसीबों को उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिला वो इनकी अज़मत के कायल हुए बगैर ना रह सके। मौलाना इन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगजार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। इनकी ज़िंदगी फ़िक्र इस्तग़ना और ईसार व खलूस का बेनज़ीर मजमुआ थी। हसरत अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए, कई बार क़ैद बामशक्क़त की सज़ा भुगती और एक एक दिन में मन मन भर आटा पीसा। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया था जिसे बेबाकी और सावगोई की पादाश में बंद करना पड़ा। प्रेस और कुतुबखाना जब्त हुआ। मजामीन के मसवदात इनकी आंखों के सामने नज़र आतिश किए गए। कॉलेज की हदूद में दाखिला ममनू हो गया तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा की तरफ से बायकॉट किया गया। जेल गए तो गुज़र अवकात के लिए इनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा और किसी हमदर्द ने माली मदद करना चाही तो ये कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूँ। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा, हालत बिगड़ी और दुनिया से रुखसत भी हो गया, मगर हुक्काम ने बाप को मुतला करना भी ज़रूरी ना समझा। बहुत दिन बाद जब इस जागा हादसे की इतला मिली तो हसरत सिर्फ आह भर कर रह गए। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया तो इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। किसी के हिस्से में दान दौलत आई, किसी ने शोहरत पाई, किसी को सिर्फ इज्जत मिली, मगर हसरत को कुछ भी ना मिला। वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे। इन्हें इनाम मिला तो ये कि इनके अपनों ने कहा बड़े मियां सठिया गए हैं, फहम फरासत से महरूम हैं, सियासी शऊर से बेबहरा हैं। उन्होंने कुछ भी तो ना पाया, ना यगानों से ना बेगानों से, मगर ये हसरत ही थी जो हमें सरफराजी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। हम हमेशा सर उठाकर कह सकेंगे कि जब मुल्क के बड़े बड़े सूरमा आज़ादी कामिल का नाम लेते घबराते थे, तो एक मर्द मुसलमान उर्दू के एक शायर व अदीब ने हज़ार मुखालिफत के बावजूद हज़ारों के मजमूए में फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। यह और बात है कि कोई जवान मर्द इसकी आवाज़ में आवाज़ न मिला सका। इस वाक़े का जिक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक तारीखी जलसा था। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद नज़रबंद थे, बाकी हजरात शरीक थे। डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ इजलास में मैं भी था। इजलास के पिंडौल से बाहर एक शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। गांधी जी ख़ास तौर से मुसलमानों से कुछ कहने के लिए आए हुए थे। इतने में देखा कि कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी से घबराए हुए भागते हुए दो वॉलंटियर आए और गांधी जी से नहायत इस्तराब के साथ कहा कि जल्दी चलिए। कमेटी में हसरत मोहानी साहब ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी है और किसी तरह वापस नहीं ले रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि फ़ज़ा में कोई गैबी गोला आकर पड़ा। गांधी जी घबराए हुए जलसे से उठकर सब्जेक्ट कमेटी की तरफ रवाना हो गए, मगर हसरत बदस्तूर अपनी बात पर जमे रहे और नोटिस दिया कि वो इसे खुले इजलास में पेश करेंगे। चुनांचे वो वक्त आया जब खुले इजलास में हसरत ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की और आंखों ने देखा कि हज़ारों के मजमूए में एक आवाज़ भी उनकी ताईद में ना उठी। हसरत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नज़र जाती और जम के रह जाती है वो इनका फ़िक्र इस्तग़ना है। सारी ज़िंदगी इनका हाथ तंग रहा। ऐसों के दिल में दौलत की हरस को ज़्यादा घर कर लेती है, मगर हसरत का मामला बिल्कुल बरक्स था। कभी दौलत इन पर मेहरबान हुई भी तो फौरन तो कभी दौलत इन पर मेहरबान हुई भी तो मौलाना फौरन घबरा के एक कदम पीछे हट गए। महात्मा गांधी ने एक बार पंडित नेहरू से सवाल किया था, जवाहरलाल ये बताओ कि देश आज़ाद हुआ और तुम प्रधानमंत्री बनाए गए तो क्या तनख्वाह लोगे? 100 रुपये माहवार, उन्होंने अजराए इनकसार जवाब दिया। इस पर महात्मा चीख पड़े, जवाहरलाल तुम इस नंगे भूखे देश से 100 रुपये तनख्वाह लोगे? 100 रुपये? जब देश आज़ाद हुआ तो हसरत की समझ में ये बात ना आई कि पार्लियामेंट के मेंबर खुद अपनी सरकार से इतनी बड़ी बड़ी रकमें सफ़र के खर्च के तौर पर क्यों वसूल करते हैं। उन्होंने एक मुशायरे के मुंतजमीन से ये कहकर सफ़र खर्च लेने से इनकार कर दिया था कि मैं गिरफ्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठकर आया हूँ, किराया कैसे ले लूँ। एक बार PhD का ज़बानी इम्तिहान लेने वो अलीगढ़ आए। दस्तखत के लिए TA बिल पेश किया गया। मीज़ान पर नज़र पड़ी तो देर तक कहते रहे कि इतने बहुत से रुपयों का हम क्या करेंगे। फिर तफसील पर नज़र पड़ी तो चौंके, बोले हम तो थर्ड क्लास में आए हैं, फर्स्ट क्लास का किराया कैसे ले लें। फिर इरशाद हुआ, हम तो आपके घर ठहरे हैं, ये क़याम व ताम का खर्च क्या मायने। फिर कुछ और ख्याल आया, बोले हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में ज़रा देर को यहाँ उतर गए, हम तो कुछ ले ही नहीं सकते। जो शख्स दरवेशाना ज़िंदगी बसर करता हो इसे रुपये पैसे की ज़रूरत भी क्या। एक दोस्त को खाने पर मधु किया। दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज़ के लिए देवड़ी में चटाई बिछा दी, फिर अंदर से एक रिकाबी में चने की दाल का सालन और तबाख में रोटियां ले आए। इसे मोहब्बत से बिठाया और मेज़बानी का हक अदा कर दिया। लिबास की तरफ से वो हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल पहन लिए। वो इनके कपड़े खुद ही सीती थी और खुद ही धोती थी। मौलाना को अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का हिस्सा ही पाक हो गया। जब कॉलेज के असातिज़ा और तुलबा ने हसरत के स्वदेशी स्टोर का बायकॉट किया तो ज़रा भी हिरासा ना हुए। बोले, हमारा खर्च ही कितना है जो फिक्रमंद हूँ। मुलाजिम रखने के तो हालात ने कभी इजाज़त ही ना दी। किराए के जिस मकान में रहते थे इसमें नल नहीं था। मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नलका था। हसरत पैंचे चढ़ाकर बाल्टियाँ भर भर के लाते और दिन भर की ज़रूरत के लिए घड़ों में पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार कर देते। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा, रस्सी से बंधा दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकलकर पाप यादा नई दिल्ली की जामा मस्जिद में जा पहुंचते कि यही इनकी क़यामगा थी। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर एक पैसा वसूल ना करना हो वो ये ना करता तो और क्या करता। हसरत शायर थे, हुस्न परस्त थे और अखलास के पीकर। जिससे एक बार मुलाकात हो गई इसे हमेशा मोहब्बत से याद किया। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे, मगर ये सब ऐद शबाब की बातें हैं। उन्होंने जिसे टूट कर चाहा वो थी इनकी बेगम निशातुन्निसा। कहा करते थे कि जुलेखा, कमला और निशात ना होती तो अबुल कलाम, जवाहरलाल और हसरत भी ना होते। हसरत को अपने वतन से जो इश्क था वो इसकी आज़ादी के लिए इनके दिल में जो बेपनाह तड़प थी इसकी तरफ कुछ इशारे ऊपर किए जा चुके हैं। मुल्क की खातिर जेल तो हज़ारों लोग गए लेकिन वहाँ लोगों ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी इससे हम नावाफिक नहीं हैं। मसलन जेल में मौलाना आज़ाद और उनके रुफ़ा के शब रोज़ क्या थे। गुब्बारे खातिर के खतूत से इसका हमें इल्म हो चुका है। अब सुनिए हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी। जेल पहुँचते ही एक लंगोट, जांगिया कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला। एक कदा आहिनी बड़ा, एक छोटा ज़रूरियात को रफा करने के वास्ते मरम्मत हुआ। फिर मुझे इलाहाबाद जेल में मुंतकिल किया गया जहां क़ैद की सारी मुद्दत रोज़ाना एक मन आटा पीसना पड़ा। ये शेर इसी ज़माने की यादगार है। है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत का ताल्लुक गर्म दल से था। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क ना कर सके और सारी ज़िंदगी इसका खमियाजा भुगता। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। हसरत ने सुना तो हैरान हुए कि ये क्या नाफरमानी हुई। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, तो दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी मगर इजहार नाफरमानी के लिए ज़मीन पर औंधे लेट गए कि मैं तो नहीं जाता। मार पड़ रही है मगर नहीं उठते। सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ ली। आखिर बा हज़ार दिक्कत ज़बरदस्ती लारी पर लाद कर ले जाए गए। गांधी जी और उनके फ़लसफे अदम तशद्दुद के वो कायल न थे। जब उन्होंने फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने समझाया कि अभी इसका वक्त नहीं आया, मगर वो ना माने। हसरत की तजवीज़ के ख़िलाफ़ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा था, हसरत साहब, हमें इस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं। हसरत बड़े बेबाक और बला के सागो थे। दिल की बात ज़बान पर लाने में इन्हें कभी तामुन ना होता था। इसमें कभी कभी नागुफ्तनी बात भी ज़बान से निकल जाती थी, जिसका तावान बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ता था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हसरत गौर व फिक्र के आदि ना थे या उनमें तदब्बुर की कमी थी। उनके मिजाज में एक तरह की जल्दबाजी ज़रूर थी, वो हर काम जल्दी करते थे। इनका दिमाग भी इसी तरह तेज़ रफ्तारी से सोचता था, और जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते थे तो चूंकि मसलहत का इनके मिजाज में गुज़र ना था, मौका महल देखे बगैर दिल की बात ज़बान पर ले आते थे। वरना इनकी दूरंदेशी और फहम फरासत के सबूत में बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। मौलाना हसरत मोहानी को पहली बार नई दिल्ली की एक मस्जिद के पास उलझी हुई बेहंगम दाढ़ी, पिचकी हुई तुर्की टोपी, टूटी हुई कमानी की ऐनक, मली दली शेरवानी के साथ एक हाथ में लोटा उठाए, दूसरे में रस्सी से बंधा दरी तकिया संभाले, फटी फटी बारीक आवाज़ में बोलते देखा तो एक अजीम शान दीवार ढहती हुई नज़र आई। मगर जब इनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से शनासाई हासिल हुई तो इसी शिकस्ता दीवार के मलबे से एक मीनार नूर बुलंद होता दिखाई दिया, ऐसा बुलंद कि आज तक तो इसका हमसर कोई दूसरा मीनार नज़र आया नहीं।